4 नवंबर सोमवार कार्यक्रम नमस्कार भारत, मैं हूं कुलदीप मिश्र। दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, आज से शुरू होगी गाड़ियों की ऑड इवन योजना।
ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। सबसे विनती है, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें, मैं भी फॉलो करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम होगा ये हफ्ता, कई बड़े फैसलों का इंतजार।
सबसे जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला आने वाली है वो अयोध्या का है। 450 साल से जो जमीन का विवाद चल रहा है उसके ऊपर फैसला आने वाली है।
करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर, क्या सिद्धू जाएंगे पाकिस्तान?
सीएम साहब जब तक परमिशन नहीं देंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री परमिशन नहीं दोगी, कुछ भी काम बिना परमिशन तो नहीं होता।
होगी वसुतुल्ला खान की डायरी भी, लेकिन ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। इस बीच आज से दिल्ली में ऑड इवन योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत 15 नवंबर तक ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर उतर सकेंगी। लेबनान में प्रधानमंत्री साद हरीरी के इस्तीफे और राष्ट्रपति के एकता की अपील के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि मौजूदा सरकार को पूरी तरह से हटा दिया जाए। लोगों का कहना है कि ये तंत्र भ्रष्ट है और बेतहाशा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। प्रदर्शनों में शामिल हुई एक महिला ने कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, इन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। अगर वो हमें अपना अधिकार दे देते तो हम यूँ सड़कों पर ना होते। हमें दवाइयाँ चाहिए, बिजली चाहिए, ये हमारा अधिकार है। सार्वजनिक संस्थाओं को लूटा गया है और हम बस ये चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार वापस दिया जाए। ये थे लेबनान में प्रदर्शनों में शामिल एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विसल ब्लोअर का नाम बताने की मांग की है जिसकी शिकायत पर उनके खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू की गई। ट्रंप का कहना है कि इस अज्ञात खुफिया अधिकारी ने झूठी जानकारी दी है। विसल ब्लोअर ने झूठी रिपोर्ट दी है और उस झूठी रिपोर्ट की वजह से लोगों को लग रहा है कि गलत चीजें हुई। और फिर डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने कांग्रेस के सामने झूठा बयान दिया। लेकिन विसल ब्लोअर की पहचान जाहिर की जानी चाहिए क्योंकि विसल ब्लोअर ने झूठी कहानियां बनाई हैं। कुछ लोग इसे छल कहेंगे, मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन विसल ब्लोअर का नाम बताया जाना चाहिए। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया की संघीय सहायता रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम को हाल में जंगलों में लगी आग के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि गवर्नर ने जंगलों के प्रबंधन का काम ठीक से नहीं किया, फिर भी सरकार से वित्तीय मदद मांग रहे हैं। वहीं गेविन न्यूसम ने ट्रंप के ट्वीट्स पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप जलवायु परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस बातचीत में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफे की मांग कर रहे इस्लामी समर्थकों का प्रदर्शन इस्लामाबाद में जारी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था जो बीत चुका है। प्रदर्शनों का आयोजन एक धार्मिक संगठन के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने किया है जिन्होंने सरकार पर पिछले साल हुए चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया है। इराक के प्रधानमंत्री ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों से सड़कों को फिर से खोलने और देश में सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। उन्होंने ये अपील तब की है जब सरकार 1 महीने से जारी प्रदर्शनों की वजह से राजधानी बगदाद और देश के ज़्यादातर दक्षिणी हिस्से ठप पड़ गए हैं। वेनेजुएला ने अल सल्वाडोर के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इससे एक दिन पहले अल सल्वाडोर ने भी वेनेजुएला के सभी राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह कदम उठाया गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुई नस्लीय और धार्मिक हिंसा की घटनाओं की निंदा की है और कहा है कि इन घटनाओं ने सभी को दुखी किया है। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने कहा कि पिछले महीने ओरिमी क्षेत्र में हुए हमलों में 86 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत, और आपके साथ मैं हूं कुलदीप मिश्र। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कल राजधानी और उसके आसपास के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 1000 के आंकड़े को भी पार कर गई। प्रदूषण को लेकर पैदा हुई इस आपात स्थिति के बीच कल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें प्रदूषण के हालात पर नज़र बनाए रखने के आदेश दिए। वहीं से लेकर राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला भी जारी है। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण अपने जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। बीते रोज दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता 1000 के आंकड़े को भी पार कर गई। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी पहले से ही लागू है, लेकिन हालात दिन गुजरने के साथ और बदतर होते जा रहे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदूषण के हालात पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में तय किया गया कि कैबिनेट सचिव लगातार प्रदूषण के हालात पर नजर रखेंगे। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव हर रोज अपने अपने राज्यों में प्रदूषण के हालात को मॉनिटर करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 4 और 5 नवंबर के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में पहले से ही स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए जा चुके थे। इन सबके बीच आज से दिल्ली में ऑड इवन स्कीम भी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली में आज से 15 नवंबर तक ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख के दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर उतर सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से इस योजना में सहयोग करने की अपील की है।
ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें, मैं भी फॉलो करूंगा।
वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे केजरीवाल सरकार का एक नाटक बता रही है। बीजेपी के नेता विजय गोयल ने कहा कि 5 साल से केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
ऑड इवन नाटक, चुनावी स्टंट है, ड्रामा है। जो उन्होंने उपाय 5 साल में प्रदूषण के लिए करने थे वो किए नहीं। ये देखिए, ये ओखला, भवाना, शहजादाबाद, सब जगह का इंडस्ट्रियल एरिया का ये है, जल रहा है कूड़ा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ 5 साल जिस सरकार ने की नहीं किया कुछ, अब वो ऑड इवन का नाटक है, मुझे उसका विरोध करना है।
प्रदूषण की वजह से सिर्फ राजधानी ही नहीं, उसके आसपास के अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं और सभी एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आप और भाजपा दोनों ही दल जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।
भाजपा और आप दोनों को परस्पर राजनीति करने के लिए, एक दूसरे के साथ शैडो बॉक्सिंग के लिए मौका मिल रहा है, जबकि हकीकत यह है दोनों दोषी हैं स्थिति को खड़ा करने के लिए, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।
दिल्ली में आज से लागू होने वाले ऑड इवन के लिए दिल्ली सरकार ने कई अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला भी किया है। महिलाओं को इस योजना में छूट दी गई है। हालांकि इस बार प्राइवेट CNG कारों पर यह नियम लागू होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोगों को दिल्ली में इस दम घोटू माहौल से राहत मिल पाती है या नहीं। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
आपका आरोप भाजपा पर, भाजपा का आरोप आप पर और कांग्रेस का आरोप दोनों पर। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आज से गाड़ियों की संख्या में कुछ कमी नजर आ सकती है, क्योंकि आज से दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना शुरू हो रही है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी हद तक मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ नाटक बता रहा है। क्या मौजूदा हालात में ये योजना प्रदूषण को कम करने में वाकई कारगर होगी? BBC संवाददाता नवीन नेगी ने पूछा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय से।
ऑड एंड इवन से फायदा ये होने वाला है कि गाड़ियों की संख्या कम होगी, 4-व्हीलर्स की संख्या, और ट्रैफिक की स्पीड बढ़ेगी और कंजेशन कम होने की संभावना है। कंजेशन के कम होने से दो तरह के बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये है कि एक्सपोजर लेवल जो होता है, पॉल्यूशन जो गाड़ियों से लगातार निकलता रहता है, क्योंकि पीक आवर्स में दिल्ली में हमेशा जाम की स्थिति रहती है, तो उसमें प्रदूषण की कमी होगी। और अगर इसमें लोग शामिल होते हैं, कारपूल करते हैं, कार शेयरिंग करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा गाड़ियों की संख्या कम होने में।
क्या अगर ऑड इवन को पहले लागू कर दिया जाता, सिर्फ अब लागू किया जा रहा है जब इमरजेंसी जैसी हालत हो चुकी है, इतने ज्यादा बुरे हालात ना पैदा होते?
जी, ये ऑड एंड इवन हमेशा कुछ दिनों के लिए ही लागू किया जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ही लागू किया जाता है इसको।
क्यों इसको, मतलब नॉर्मल डेज में लागू करने में क्या समस्याएं हैं उसको बता सकते हैं?
नॉर्मल डेज में लागू करने से दिक्कत ये आती है कि इसमें लोग तमाम तरह के दूसरे उपाय ढूंढ लेते हैं या फिर दो गाड़ियां रखना चालू कर देते हैं, एक तरह की प्रैक्टिस चालू हो जाती है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स की संख्या आपकी देखेंगे कि बढ़ जाएगी। तो ऑड एंड इवन जो भी इम्प्लीमेंट होता है, बाहर के देशों में भी इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें ये हमेशा कुछ दिनों के लिए किया जाता है ताकि आपका बेनिफिट कम से कम हो।
कई लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक का जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हम देखते हैं, तो इसलिए ऑड इवन का इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा जितना कि सरकार अपनी तरफ से दावा करती है।
देखिए, इसमें IIT कानपुर की जो स्टडी आई थी उसमें विंटर के समय में, ठंड के मौसम में, ये ट्रैफिक का कंट्रीब्यूशन करीबन 25-26% के आसपास होता है। और इसमें चूंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, अगर आप देखेंगे दूसरे कंपैरिजन में बायोमास बर्निंग भी है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, डस्ट भी है, तो हमेशा प्रयास ये होता है कि चूंकि सभी क्षेत्र में उपाय हो रहे हैं, जैसे डीजल जनरेटर में बैन लगा हुआ है, आपके इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, गार्बेज बर्निंग में भी रेस्ट्रिक्शन है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से किसी भी उपायों को इस तरह से नहीं देखा जा सकता इसमें कि ये कम इसका कंट्रीब्यूशन है और इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है।
ऑड इवन तो चलिए लागू कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को?
मेरे ख्याल से कई क्षेत्रों में कमी रह गई है। मेरे ख्याल से ये एक हर साल की सीख है कि अगर हमारे प्रयास पहले से सफल होंगे तभी जाके हमारा प्रदूषण शुरू से कम रहेगा।
थोड़ा पहले से तैयारी करनी चाहिए, बता रहे थे पर्यावरण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय। आज सोमवार है, नया हफ्ता शुरू हो रहा है और आज से देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी होंगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपना फैसला सुना सकता है। वो कौन से अहम मामले हैं, हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने पूछा सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखने वाले पत्रकार सुचित्र मोहंती से।
सबसे जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला आने वाली है वो अयोध्या का है। 450 साल से जो जमीन का विवाद चल रहा है उसके ऊपर फैसला आने वाली है, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इतिहास में भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की इतिहास में जो सबसे बड़ा फैसला है ये हम अयोध्या मामले को मान के चल सकते हैं कि इसमें आ सकता है। देखिए, जो पक्ष है, पक्षकार सब अपना पक्ष पत्र रख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। अब रंजन गोगोई अध्यक्षता वाली पीठ जो है, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो सुनवाई खत्म कर चुकी है और लिखना भी शुरू कर दिया है उन लोगों ने। अब किसी भी समय यानी कि नवंबर 4 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच कभी भी किसी दिन फैसला आ सकता है। वो बता दूं कि नवंबर 17 तारीख जो कि नवंबर CJI रंजन गोगोई साहब रिटायर करने वाले हैं, उससे पहले ये फैसला सुना के जाएंगे।
अयोध्या के अलावा और कौन कौन से वो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन मामलों पे और फैसला आ सकता है?
देखिए, अयोध्या के अलावा और बहुत सारे 4 जजमेंट्स हैं जो कि आपको सब पता होगा, राफेल रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था, सबरीमला का रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उसके अलावा और एक जो है CJI जो ऑफिस है RTI के दायरे में आता है या नहीं आता है वो मामला भी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अयोध्या के अलावा और 3 जो मेजर केस है वो पेंडिंग है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे राफेल का जो मामला है रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, राफेल की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कुल मिलाकर 6 या 7 पिटीशन फाइल हुए थे, प्रशांत भूषण ने फाइल किया था, BJP के जो पूर्व नेता है अरुण शौरी है, फिर उसके बाद यशवंत सिन्हा, उन्होंने फाइल किया था। उनका मांग ये है कि उनकी दोबारा से जो SIT की जांच है वो होनी चाहिए, और इनके अलावा आपकी जो MP है संजय सिंह, उन्होंने भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और राफेल के अलावा सबरीमला का भी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। सबरीमला का रिपिटिशन फाइल हुआ है, बहुत 10-15 लोगों की पिटीशन फाइल किया था, इसमें कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 50-60 रिट पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला इस मामले सुरक्षित रख चुका है सुप्रीम कोर्ट, और CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई किए थे और इसमें CJI रंजन गोगोई साहब ही फैसला सुनाएंगे। ये सबरीमला का जो मैटर है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फैसला आया था, सारे वुमेन्स को जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, सारे वुमेन को मंदिर में जाने के लिए परमिशन दे दिया, उसको लेके बवाल मचा था, उसको फिर पिटीशन फाइल हुआ, उसकी भी सुनवाई खत्म हो चुकी है, सुनवाई इसमें जजमेंट आने वाली है
जी। तो क्या ये जो तमाम मामले हैं सुचित्र जी, इन सभी मामलों की जो पीठ है उनमें रंजन गोगोई हिस्सा है, इस वजह से इनके फैसले आने वाले हैं 1-2 हफ्ते के अंदर?
जी, आपका सवाल एकदम सही है। कि इसमें सारे मामलों में सीजेआई रंजन गोगोई साहब ही अध्यक्षता कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि सीजेआई रंजन गोगोई क्योंकि नवंबर 17 को रिटायर कर रहे हैं और वो भी संडे को दिन आता है, तो हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि फ्राइडे तक यानी कि 15 तारीख तक अपने जितने सारे जजमेंट है, 4 या 5 लगभग जजमेंट है, वो सब सुना के जाएंगे।
जानकारी दे रहे थे पत्रकार सुचित्र मोहंती। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले पर तनाव है, लेकिन इसी बीच दोनों देश करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां भी कर रहे हैं। 9 नवंबर को इस कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, जिससे होकर सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जा सकेंगे। वहीं शुरुआती रुझान ठंडा देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कुछ और छूट का ऐलान भी किया है। डेरा बाबा नानक से हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
भारत और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वह सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पूर्व पर करतारपुर कॉरिडोर को नवंबर 9 को खोलेंगे। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहब को जाने के लिए एक रास्ता भारत और पाकिस्तान ने बनाया है। अब भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी तरफ करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा बाबा नानक में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान करतारपुर में इसका उद्घाटन करेंगे। अब उद्घाटन समारोह में कौन किधर जाएगा, इस बात की चर्चा जोरों पर है। वैसे तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पहले जत्थे में पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहब जा रहे हैं, लेकिन जिस नाम की चर्चा जोरों पर है वह है इमरान खान के दोस्त और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रण पत्र भेजा और सिद्धू ने पाकिस्तान जाने की इजाजत पंजाब और भारत सरकार दोनों से मांगी है। इसकी पुष्टि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने की है।
सीएम साहब जब तक परमिशन नहीं देंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री परमिशन नहीं दोगी, कुछ भी काम बिना परमिशन तो नहीं होता। सो पहला लेट्स वेट फॉर द परमिशन।
अब सिद्धू पाकिस्तान जा पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर को लॉन्च किए गए वेब पोर्टल में अभी तक 4 स्लॉट ही भर पाए हैं। उधर पाकिस्तान ने 10,000 भारतीय श्रद्धालुओं को वीज़ा देने की बात कही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें भी 4,000 के करीब पासपोर्ट पाकिस्तान एम्बेसी में जमा हुए हैं। पाकिस्तान इस बात से चिंतित दिखता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 8 मीटिंग होने के बाद दोनों मुल्कों ने करतारपुर कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे। अब उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार ट्वीट के जरिए कुछ ना कुछ नई ऑफर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा श्रद्धालु पाकिस्तान आ सकें। उनका कहना है कि वे अब पासपोर्ट भी नहीं लेंगे और वीज़ा फीस भी 2 दिन के लिए माफ़ कर देंगे। और इधर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह करतारपुर कॉरिडोर पर ड्राफ्ट की तय की गई शर्तों के मुताबिक ही चलेगा। बीबीसी हिंदी के लिए डेरा बाबा नानक से रविंदर सिंह रॉबिन।
और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का और स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुप्रीत सैनी। बताइए गुरुप्रीत
जी। कुलदीप, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिल्ली के प्रदूषण की खबरें छाई हुई हैं। बीबीसी न्यूज़ यानी अंग्रेजी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो पहली खबर आपको दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर ही दिखेगी। पिछले कई दिनों में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा में भी इससे जुड़ी खबरें देखने को मिली हैं। अगर हम भारत के अखबारों की ओर लौटें तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है कि राजधानी की हवा बेहद खराब, केंद्र करेगी निगरानी।
और नवभारत टाइम्स का शीर्षक मेरे सामने रखा है, शीर्षक दिया है धुआंधार जहर। ये नवभारत टाइम्स का शीर्षक है। एक छठ पूजा की तस्वीर भी नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापी है और महिलाएं पानी में खड़े होकर के सूरज को अर्घ दे रही हैं और लिखा है बर्फ नहीं यह है प्रदूषण के झाग वाली जमुना, वो जो जिस पानी में वो खड़ी हैं उसमें झाग उठा हुआ है।
जी, द हिंदू अखबार की हेडलाइन है कि पिछले 3 साल में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। वही एक और अहम खबर दिख रही कि कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी का फोन भी हैक किया गया था, व्हाट्सएप ने उन्हें मैसेज करके ये जानकारी दी थी। इस बीच कांग्रेस नेताओं की अध्यक्षता वाली 2 संसदीय समितियों ने व्हाट्सएप जासूसी मामले को देखने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाला जिले में चरमपंथियों की ट्रेनिंग गतिविधियों का पता चला है। ये वो सीमावर्ती जिला है जहां करतारपुर गुरुद्वारा है। जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट भी सुनी कि वहां करतारपुर गलियारे के उद्घाटन की तैयारियां भी चल रही हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि बीजेपी दो दिन में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि फडणवीस 6 नवंबर को गवर्नर को पत्र भेज सकते हैं। बीजेपी के 105 विधायकों के अलावा उनके पास कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। वहीं शिवसेना का दावा है कि उनके पास भी पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। एनआरसी भविष्य का आधार दस्तावेज, ये कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। भारत की आपत्ति पर व्यापार करार टला, ये खबर है हिंदुस्तान अखबार में। भारत की नई मांग के चलते दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता टल गया है, RCEP, जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी।
जी बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी अखबारों की समीक्षा के लिए। श्रोताओं आप जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। इसके बाद भारत सरकार ने बीते शनिवार को देश का नया नक्शा जारी किया है। इस घटना पर वसतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी डायरी में।
भारत ने कश्मीर का जो नया नक्शा छापा है उसमें पाकिस्तानी प्रशासित गिलगित और बल्तिस्तान को लद्दाख के नए संघीय क्षेत्र का और पाकिस्तानी प्रशासित आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद और मीरपुर को जम्मू कश्मीर के नए संघीय क्षेत्र का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे को जाहिर है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रद्द कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी नक्शे में तो पहले ही से पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर इस पे बारीक शब्दों में ये भी लिखा हुआ है कि ये विवादित क्षेत्र है। जबकि भारत के पुराने नक्शे में भी गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी प्रशासित आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पे विवादित क्षेत्र भी नहीं लिखा जाता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपने वाले नक्शों में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जिस देश के कब्जे में है उसे वैसा ही दिखाया जाता है, सिवाय चाइना के जो लद्दाख का कुछ हिस्सा और अक्साई चिन का इलाका अपना जताता है। पर वो जो कहते हैं कि किस्मत बदले ना बदले मगर हाथ की रेखा, सीमा की लकीर और नदी का रास्ता हमेशा बदलता रहता है और इन तीनों को तब्दीली से कोई नहीं रोक सकता। कभी ब्रिटेन के नक्शे में आधी दुनिया शामिल थी, आज ब्रिटेन ही यूरोपीय नक्शे से बाहर कूदने के लिए हाथ पाँव मार रहा है। कभी अल्जीरिया फ्रांस के नक्शे में और पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के नक्शे में और बर्मा बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के नक्शे में थे, फिर एक के चार चार नज़र आने लगे। इसीलिए मुझे आज तक मातृभूमि और पैतृक भूमि की संस्कृत समझ में नहीं आई और ना ही ये बात पल्ले पड़ी कि हम अपने देश के चप्पे चप्पे के लिए जान दे देंगे का आखिर अर्थ क्या है। कोई ये नहीं कहता कि हम अपने देश की सीमा के अंदर रहने वाले सब लोगों की रक्षा के लिए जान दे देंगे या ले लेंगे। और बाय द वे, क्या रक्षा का मतलब जान देना, लेना या दुश्मन को खाक में मिलाना ही रह गया है, या समझदारी ये है कि आंखों में खून उतारे बगैर या दिल दहला देने वाले नारे लगाए बगैर हम एक दूसरे की सीमा, चारदीवारी और इज्जत का ख्याल रखना सीख लें। प्यारे दोस्तों, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये भूमि थी, जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये भूमि रहेगी और इस पे कोई और रहेगा। अशोका के साम्राज्य में तो अफगानिस्तान भी शामिल था, अब अफगानिस्तान एक अलग देश है। तो फिर कौन सी मातृ या पैतृक भूमि, या ये तेरा है ये मेरा और एक इंच भी आगे बढ़ा तो लिटाल दूंगा इसी भूमि पे। जाहिर है कि एक दिन तो हम सभी लेट जाएंगे इसी भूमि पे, कोई पहले कोई बाद में। इसलिए नक्शे बनाने और एक दूसरे को नक्शे दिखाने का कोई मतलब ही नहीं। आदमी हो तो आदमी बन के जियो और इज्जत से निकल लो, नक्शेबाजी मत करो प्लीज।
वसतुल्लाह खान की डायरी आपको कैसी लगी, लिखिएगा जरूर। और अब समय है हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्ता। लगातार 8 मैच हारने वाली बांग्लादेश ने आखिरकार कल दिल्ली में खेले गए पहले 2020 मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हराकर पहली जीत का स्वाद चखा। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य था, जो उसने विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के नाबाद 60 और सौम्य सरकार के 39 रन की मदद से 19.3 ओवर में केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने निर्धारित 20 ओवर में धवन के 41 रन की मदद से 6 विकेट खोकर 148 रन बनाए। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश शानदार खेली और उसने शुरू से भारत पर दबाव बनाए रखा।
I thought they played well, put us under pressure right from the start. Those crucial breakthroughs at the start when we were batting, and then they were pretty smart with the bat as well. We made mistakes on the field. We have to accept that.
और अब समीक्षा। इन दिनों की आबोहवा देखते हुए क्या दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का 2020 मुकाबला होना चाहिए था? कहने को ठंडी हवाएं जो लहरा के आए उन्हें रोकने के लिए कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली के बस में होता तो आज वो पंजाब और हरियाणा से आने वाली हवाएं जरूर रोक लेती, क्योंकि वहां तथाकथित रूप से पराली जलाने से दिल्ली में हवा का प्रदूषण स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बीते शनिवार को हर अखबार की हेडलाइंस थी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी, दफ्तरों में समय बदले, 5 नवम्बर तक सभी स्कूल बंद, खुले में सैर या कसरत ना करने की सलाह, अगरबत्ती और मोमबत्ती भी इस्तेमाल ना करें। और तो और बांग्लादेश के मुख्य कोच रसेल डोमिंगो ने शुक्रवार को अभ्यास सत्र के बाद तंज भरे स्वर में कहा, बांग्लादेश में भी प्रदूषण समस्या है लेकिन इससे कोई मर नहीं जाएगा। खेल पत्रकार राकेश राव कहते हैं,
दिवाली के ठीक बाद का जो टाइम होता है यहाँ पे, क्योंकि हवा नहीं चल रही है, बारिश नहीं आ रही है, तो ये जो पार्टिकुलेट्स हैं ये हवा में रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, ये नहीं था कि हमको पता नहीं था। पूरी शेड्यूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों अपने मेहमानों को यहाँ बुलाएं और उनको इस वक्त एक ऐसे माहौल में रखें, और हालांकि वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका बप्पन है, लेकिन ये मैच इस वक्त दिल्ली को अभी क्यों दें आप?
हैरानी की बात तो ये है कि ठीक ऐसी ही परिस्थिति साल 2017 में भी थी, जब दिल्ली में दिसंबर में श्रीलंका टेस्ट मैच खेली थी। तब भारत के सलामी बल्लेबाज दिल्ली के ही शिखर धवन ने खुले दिल से स्वीकार करते हुए कहा था,
श्रीलंका में जो ऐसी सिटी है जिसमें बीचेस हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन वैसे ही कम रहता है, तो ऑफ कोर्स उनको फील हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो इस बात को ना मैं छुपाऊंगा, फिर भी खेलने जो हमारा काम है तो वो हमें करना चाहिए।
खिलाड़ी का धर्म खेलना, वो तो खेलेगा ही, लेकिन जब खेलने से पहले ही सांस फूल जाए तो क्या खेलेगा? DDCA यानी दिल्ली राज्य क्रिकेट संघ में साल 1986 से 1994 तक फिजिशियन और दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर जवाहरलाल जैन कहते हैं,
सौरभ गांगुली जो बोर्ड प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये कहा कि इस स्टेज के ऊपर मैच को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करना संभव नहीं होगा, लेकिन शायद मैं समझता हूँ पहले इस तरह का डिसीजन ले लेना चाहिए था कि शाम को 7 बजे के बाद में जब ओस भी पड़ेगी, धुंध भी मतलब होगी, स्मॉग भी होगा, तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के साथ डेफिनेटली उनकी सेहत के साथ एक खिलवाड़ है, और खिलाड़ी के आप जुकाम खांसी नजला और सांस लेना, अब वो इतनी स्पीड पे अगर 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल करेगा जल्दी सांस फूल जाएगा, और कितना मास्क लगा के कितना खेलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली का प्रदूषण है वो इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के ऊपर है। आइडियली इसमें आउटडोर एक्टिविटी जितनी ना हो बंद की जानी चाहिए।
आज दिल्ली इस दौर में है जहाँ खिलाड़ी ही नहीं हर आदमी यही कह रहा है,
सीने में जलन
उधर भारत के लक्ष्य सेन ने कल चीन के वांग होंगयांग को 17-21, 21-18, 21-16 से हराकर जर्मनी में आयोजित सार्लोर लक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
समय अब कम है, चला चली की विला आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। इस बीच आज से दिल्ली में ऑड इवन योजना शुरू हो गई है। लेबनान में प्रधानमंत्री साद हरीरी के इस्तीफे और राष्ट्रपति के एकता की अपील के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विसल ब्लोअर का नाम बताने की मांग की है जिसकी शिकायत के वजह से उनके खिलाफ महाभियोग की जाँच शुरू की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया की संघीय सहायता रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर को हाल में जंगलों में लगी आग के लिए जिम्मेदार ठहराया। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात दिन भर में होगी। समय आप जानते ही हैं, शाम 7:30 बजे। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। तो अब कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बीबीसी हिंदी के साथ। नमस्कार।